قد نرى تقلب وجهك في السماء اے نبی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. قد تحقیق, یعنی قد کا مطلب ہوتا ہے جیسے حقیقت یہ ہے. تحقیق نرا, ہم دیکھتے ہیں, یعنی ہم دیکھ رہے تھے. تقلبا, بار بار پھرنا, وجہ کا, آپ کے چہرے کا, فی السما, آسمان کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ کعبہ بن جائے, یعنی قبلہ بن جائے بیت اللہ. تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تھے. دیکھیں مسلمانوں کی جو خاص طور پہ مہاجرین تھے نا, ان کی ایفیلیشن کس سے ساتھ تھی؟ بیت اللہ کے ساتھ تھی, کعبہ شریف کے ساتھ تھی. اب دیکھیں ان کا وطن چھوٹا, ان کے خاندان چھوٹے, ان کے گھر بار چھوٹے. اب جب مدینہ آئے تھے تو سوچیں کعبہ بھی چھوٹ گیا, یعنی وہ ڈائریکشن بھی دوسری طرف کر دی گئی کہ بیت المقدس کی طرف. ان کا کتنا بڑا امتحان تھا کہ سب چھوٹا تو چھوٹا, اللہ کا گھر بھی چھوٹ گیا. یہ ان کا امتحان تھا اس وقت, اور بعد میں باقی سب کا بھی امتحان کہ آپ کون اس طرف کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں, وہ امتحان ضرور لیتا ہے, امتحان ضرور لیتا ہے, اور ہمارا بھی امتحان ہوگا اور ہوتا ہے, اور ہم امتحانوں میں ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہی تو بات ہے, دیکھیں یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے نا کہ کیوں یہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ بتا کے نہیں امتحان لیا جاتا کہ یہ آپ کا امتحان شروع ہو رہا ہے. دنیا کے تو امتحان, چلو یہ جو ہم اپنے سکولوں کالجوں میں دیتے ہیں, پتا تو ہوتا ہے نا امتحان. یہ زندگی کے امتحان انسان کو بتایا نہیں جاتا, کوئی فرشتہ نہیں آ کے بتاتا آپ کا امتحان سٹارٹ ہو گیا, اب آپ کا امتحان فنش ہو گیا. ہم امتحان میں ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس وقت کہ میں کر کیا رہی ہوں, اس سچویشن میں کیا کر رہی ہوں, ان حالات میں کیا کر رہی ہوں. جب لوگ باتیں بناتے ہیں تو میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, جب لوگ میری طرف دیکھتے تو مجھے کیسا کرنا ہے, جب یہاں پہ اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو کیسا بولنا ہے, اس کے ساتھ رکھنا ہے تو کیسا اخلاق رکھنا ہے. اللہ سب دیکھ رہا ہے. یہ امتحان ہم اگنور ہی کر جاتے ہیں, ہم بھولے ہی رہتے ہیں کہ ہمارا امتحان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی بہت بیت اللہ سے, خانہ کعبہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے ہوتا ہے نا ہم بھی کبھی کوئی بات ایسی ہو کچھ, وہ تو ایسے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جیسے اللہ سے ایک آس, یا جب کبھی دعا بھی کرنی ہو یا کچھ ہے, خود بخود چہرہ اٹھ جاتا ہے آسمان کی طرف, کیونکہ اللہ بلندیوں پہ ہے, اللہ آسمان پہ ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا چہرہ اٹھتا تھا کہ کب, اس انتظار میں کہ کب آئے گا اللہ کی طرف سے یہ حکم کہ قبلہ تبدیل ہو. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تو بس ہم ضرور پھیرے دیتے ہیں آپ کو قبلے کی طرف, تَرْضَاهَا, تو راضی ہو جائے اس سے. سبحان اللہ, اللہ کو اپنے نبی کی رضا دیکھیں کتنی پیاری ہے کہ آپ خوش ہو جائیں اس سے, آپ خوش ہو جائیں. تو ہم نے قبلہ بدل دیا, اب آپ ہم پھیر رہے ہیں قبلے کو آپ کے لیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ, کہ انسان کی یہ کتنی بڑی یعنی ایک منزلت ہے, کتنا بڑا کسی انسان کا مقام ہے کہ اللہ تعالی یہ فرما دے کہ تو راضی ہو جائے, اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف میں ہے کہ حضرت برہ بن عازب سے روایت ہے کہ 16-17 مہینے تک تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی, لیکن خود آپ کی یہ چاہتی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ, تو اب حکم آ گیا اور آپ نے عصر کی نماز اس کی طرف ادا کی. آپ کے ساتھ کے نمازیوں میں سے ایک شخص کسی اور مسجد میں پہنچا, وہاں جماعت رکوع میں تھی. اس نے ان سے کہا اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. جب ان لوگوں نے سنا تو اسی حالت میں وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے. تو اس میں ہے کہ عصر کی نماز, دوسری جگہ پہ ہے کہ یہ تو مکمل نماز پڑھی, لیکن دوسری جگہ پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے, دو رکعت ادا کر چکے تھے, باقی کی دو رکعت آپ نے, آپ کے اوپر وہی آ گئی اور آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف پڑھی. اسی وجہ سے اس جگہ اب مسجد قبلہ تعین ہے, دو قبلوں والی مسجد, اور آپ اس پہ دیکھیں گے دو مینارے بنے ہیں, ایک بیت المقدس کی طرف ہے اور ایک کعبۃ اللہ کی طرف ہے. تو وہاں پہ جب جائیں آپ تو اس چیز کو نوٹ کریے گا. फिर आगे वहां से पढ़ के जब वो आगे गए हैं तो दूसरे लोगों को सहाबी ने देखा तो उनको भी वहीं पर बता दिया, वो भी घूम गए। उन्होंने भी ना सोचा कि अच्छा ऐसा हो गया, और उन्होंने नमाज तोड़ के और पहले पूछा हो बताओ अच्छा कब ऐसा हुआ था, अच्छा क्या हुआ था, अच्छा फिर किस तरह आप लोगों ने कैसे किया, ये कब आया कब हुक्म, कुछ नहीं पूछा, नमाज के अंदर ही वो घूम गए। यानी इससे ज्यादा आप कोई इताअत और इत्तेबा फरमा बरदारी का कोई और नमूना ला सकते हैं? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, और कि नमाज में ही कोई क्वेश्चनिंग ही नहीं। और हम अपने रवैयों को जरा देखिए आज, कि अल्लाह की फरमा बरदारी करने में हम कितनी सोच विचार करते हैं, कितनी थिंकिंग होती है, जबकि हमारे सामने अल्लाह का हुक्म आ जाता है, हम पढ़ भी लेते हैं, समझ भी आ जाती है, कन्विंस भी हो जाते हैं, लेकिन अमल नहीं करना चाहते। तो ये नहीं हम सोचते क्या कि पता नहीं वक्त मिलेगा भी या नहीं मिलेगा जिंदगी में अमल करने का, फिर आज ही मैं कर लूं, ये नहीं सोचते। देखिए, और दूसरी हमें ये देखिए कितनी ये बात पता चलती है ना कि हालात बदलते हैं, चेंज आती है, और चेंज को कबूल करना मुश्किल होता है, मगर वही इम्तिहान होता है कि कौन है जो उस वक्त अल्लाह के हुक्मों को पकड़ ले और उनके मुताबिक चले, और कौन है जो उस वक्त पसों पेश करे कि अब मैंने ये चेंज मुझे नहीं पसंद आई। ये कितनी बड़ी चेंज थी ना, आसान बात नहीं थी। फिर हमें देखे यहाँ पे कहा गया फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया फवल्ली आप बस फेर ले अपने चेहरे को शतर अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। तो काबा नहीं कहा गया, मस्जिद हराम कहा गया। अगर काबा सिर्फ कहा जाता ना तो फिर हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते कि हमारी बिल्कुल डायरेक्शन नमाज में ऐसी होनी चाहिए कि हम लाइन यहां से खींचे, तो मतलब हम इतनी दूर बैठे हुए तो लाइन यहां से खींचे तो काबा तक जाए, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जब कह दिया ना शतर अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम की डायरेक्शन में, तो फिर क्या है शतर मतलब दूर की किसी चीज की तरफ रुख करना, ये होता है। तो अब क्या है, अब पूरी मस्जिद हराम की तरफ किसी डायरेक्शन में भी हमारा मस्जिद हराम की तरफ एज लॉन्ग एज है तो पूरी मस्जिद में हम उस तरफ डायरेक्शन करके पढ़ सकते हैं। हाँ जब हम मस्जिद के अंदर हैं जाहिर है वहां पे हम पहुंच गए तो फिर तो काबा की तरफ ही डायरेक्शन करेंगे, मगर हम दुनिया में कहीं बैठे हैं तो फिर हम मस्जिद हराम की तरफ कर लें, वही काफी है। वही सुमा कुन तुम फवल्लु वुजूहकुम शतरा, जहां कहीं भी हो तुम दुनिया में, यानी अब ये सबके लिए हुक्म आ गया, हई सुमा कुन तुम फवल्लु तुम सब फेर लो अपने चेहरों को उसकी तरफ। अच्छा ये हुक्म आप देखेंगे रिपीट हुआ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए कि काबा को किबला बनाना ऐसे ही है जैसे कि मसलन किसी को कोई सिंबल दे देना या कोई झंडा दे देना। आप देखिए झंडा उनकी निशानी होती है ना, ये किसी हर कौम की या हर हर कोई स्पोर्ट्स है या कोई कौम, आप देखते हैं उनका फ्लैग होता है, वो उनकी निशानी होती है, वो उसको ही पकड़ते हैं, उसी को दिखाते हैं। किबला हमारी निशानी है, समझ लें हमारी पहचान है, इस उम्मत की पहचान है कि उम्मत मुस्लिमा की पहचान किबला है, काबातुल्ला है। तो काबा को जब अल्लाह ने बनाया किबला, तो अब बस तुमने इसकी तरफ ही पढ़नी है नमाज। और ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि सारी उम्मत मुहम्मदिया के लिए, इसी वजह से यहाँ पे ये आ गया वह इन्नल्लदीना उतुल किताबा, और बेशक वो लोग जो दिए गए किताब यानी यहूदो नसारा लयालमुना अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम, ये इतनी बातें बना रहे हैं ना यहूदी कि ये क्या हुआ वो क्यों हुआ ऐसे, हालांकि ये अच्छी तरह जानते कि अन्नहुल हक, कि ये हक है, क्या हक है ये हुक्म, ये सच्चा हुक्म है कि बैतुल्लाह की तरफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया मुंह मोड़ने का, ये सच्ची बात है, क्योंकि इनकी किताबों में मैंने बताया ना लिखा हुआ था कि जो आखिरी नबी आएगा उसका किबला क्या होगा, बैतुल्लाह होगा। तो उनको पता है कि ये हक है उनके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं। वला इन अतैतल्लदीना उतुल किताबा बिकुल्ली आयतिन मा तबिउ क़िबलतक, अगर इनको तुम इनके सामने कोई निशानी ले आओ, किसी तरह भी इनको कन्विंस करने की कोशिश करो, ये तुम्हारे किबले पे फिर भी नहीं आएंगे। चाहे तुम इनको दिखा दो कि ये देखें तौरात इंजील इनमें लिखा हुआ है, तुम्हारी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि उनका ये किबला होगा, फिर भी नहीं उन्होंने मानना। ये जब जिद में कोई देखे आ जाए ना, तो आप उसको मनवा नहीं सकते। आप अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में भी ऐसे लोगों को जानते होंगे, आप जितना मर्जी उनको कन्विंस कर लें, वो जब उन्होंने कह दिया ना कि नहीं मानना तो नहीं मानना। वमा अंत बिताबीन क़िबलतहुम, और ना ही आप उनके क़िबले की पैरवी करेंगे। आप भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया और आपको कह के तमाम उम्मत को बता दिया गया कि आप भी इनके क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। यानी आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कि चलो थोड़ा ये खुश हो जाएं, कोई बात नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो पढ़ी थी ना 16 महीने उस तरफ नमाज, तो कोई बात नहीं, मैं इनको थोड़ा शायद हो सकता है इस तरह ये हमारे दीन की तरफ आ जाएं, तो मैं इनको जरा खुश करने के लिए इस तरफ पढ़ लूं। नहीं, आप अगर वहां बैतुल मकदस में भी चले जाएंगे ना, तब भी आप जाके इसी तरफ नमाज पढ़ेंगे। वह माँ बादुहम बिताबे किबला तबाद, इनका तो हाल ये है कि इनके अपने भी आपस में ये एक दूसरे के किबले को नहीं फॉलो करते, नहीं फॉलो करते। यहूदी नसारा, अब वहां पे, वहां पहुंच के भी, यरूशलम में पहुंच के भी ना, बैतुल मकदस में जो ईसाइयों का किबला है वो डिफरेंट है, वो मशरिक की तरफ है, यहूदियों का मगरिब की तरफ है। वो मशरिक में कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम इधर को पैदा हुए थे, तो वो उधर को किबला, ये तो अपने एक दूसरे के किबले को नहीं फॉलो करते, तुम्हारा कहाँ करेंगे। वाला इन्हें तबाता, वाह ये इंपॉर्टेंट बात है। और अलबत्ता अगर तुमने पैरवी की इनकी ख्वाहिशात की, मिम बाद इमा जा का मिनल, इसके बाद के आपके पास इल्म आ गया, इन्ना का इधर लमिना जालिमीन, तो बेशक आप तब जरूर जालिमों में से होंगे। ये किसको कहा जा रहा है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। लेकिन आपने क्या उनकी पैरवी करनी थी, उनकी ख्वाहिशात पे चलना था? नहीं, फिर आपको क्यों कहा जा रहा है? ताकि बताया जाए, अल्लाह ताला दिखा रहे हैं। देखिए वो कहते ना कि तो वो क्या मुहावरा है कि सुनाओ बेटी को और कहो बहू को, या जो भी, कि मतलब आप बेटी को कहते हैं लेकिन आप सुना रहे होते हैं बहू को, कि उसको समझ आ जाए कि मैं अपनी बेटी को ये कह रही हूं, तो तुम भी जरा समझ लो कि ये चीज अलाउड नहीं है। तो अल्लाह ताला अपने नबी को बता रहा है ताकि उम्मत तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि जो चीज नबी से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कि वो अल्लाह के प्यारे हैं उनसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो तुम अगर करोगे तो तुमसे कैसे अल्लाह एक्सेप्ट कर लेगा वो चीज। नबी को भी फरमा दिया, नबी ने करना नहीं है, लेकिन अल्लाह ने बताना है कि ये कितना सीरियस बात है अल्लाह के नजदीक, कि अगर नबी भी ये करे तो उससे भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर आप भी जालिमों में से हो जाएंगे। तो मुझे बताएं, मैं और आप अगर करें तो फिर क्या होंगे, हम नेकों में से हो जाएंगे? और क्या चीज बताई जा रही, अगर तुम इत्तेबा करते हो इनकी ख्वाहिशात का, कब? जबकि तुम्हारे पास इल्म आ गया। इल्म क्या है? वही का इल्म, कुरान और सुन्नत। ये इल्म जब आपके पास आ गया, इतनी जबरदस्त कीमती चीज अल्लाह ने जब आपको दे दी, उसके बाद भी आप इनको फॉलो करो। इत्तेबा करना क्या होता है? फॉलो करना, किसी के फुट स्टेप्स पे चलना, उनकी ख्वाहिशात को फॉलो कर। वो वैलेंटाइन करें तो हम वो करें, वो क्रिसमस करें तो हम वो करें, वो मदर डे फादर डे करें तो वो हम करें, जो वो करेंगे ना बस, वो हेलोवीन करें तो हमने वो करनी है। हमने नहीं पीछे हटना, जैसा वो चलते हैं वैसे हम चलेंगे। तो ख्वाहिशात की इत्तेबा और क्या होती है? सिर्फ किबले में नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ने का किबला नहीं देखें, नमाज पढ़ने का किबले में तो उनकी करनी ही नहीं है, और शायद वो कोई मुसलमान करना भी ना चाहे, लेकिन बाकी किबलों का क्या हाल है? बाकी हमारी डायरेक्शंस क्या हैं? हमने किस किबले को फॉलो किया हुआ है? यहूदो नसारा के, पूरी जिंदगी में यहूदो नसारा के किबले को फॉलो करते हैं, सिर्फ नमाज में कहते हैं बस वो हम मुसलमानों वाला किबला फॉलो कर लेते हैं। तो क्या ख्वाहिशात की आज पैरवी नहीं हो रही उनकी? जैसा वो पहने वैसा हम पहने, जैसे वो बोले वैसा हम बोले, जैसे वो खाएं पिए वैसे हम खाएं पिए, हर चीज में उनकी पैरवी और अंधाधुंध पैरवी। तो हम नेकों में होंगे क्या उसके बाद? फरमाया ए नबी, आप भी ऐसा करेंगे तो आप जालिमों में हो जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनकी पैरवी नहीं की, इवन रोजा रखने में भी उनकी पैरवी नहीं की। फरमाया वो 10 मुहर्रम का रखते तो हम 9-10 का रख लेंगे, इसमें भी नहीं उनकी पैरवी। किबला भी अल्लाह ने चेंज करा दिया, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा पूरी जिंदगी में उनके किबले को फॉलो कर रही है, जिससे अल्लाह ने मना किया उन्हीं के, जो मकदूब अलैहिम है उनके, जो दौलीन है उनके, अपनी शादियों ब्याहों में उन किसको फॉलो कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल ही मुशरिकीन के, हिंदुओं के। अपने मर्ग में किसको फॉलो कर रहे हैं? वो भी उनके, हर चीज में उनके किबले को फॉलो करते हैं। जिसके बाद के आपके पास अल्लाह का कलाम आ चुका है, उसके बाद भी अकल ना आए, समझ ना आए, तो कब आएगी? अल्लदीना आतईना हुमुल किताब यारिफूना हुकमा यारिफूना अबनाहुम, ये जिनको किताब दी गई है ये तो पहचानते हैं उसको, किसको? नबी अलैहिस्सलाम को। कमा यारिफूना अबनाहुम, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। किसी को अपने बेटे को पहचानने में कोई गलती नहीं लगती कि ये मेरा बेटा है या नहीं है, पता नहीं, मुझे तो नहीं याद आ रहा, ऐसे कोई नहीं कहता, हर एक अपने बेटे को पहचानता है। ये इतनी अच्छी तरह पहचानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि आपकी इतनी निशानियां इनकी किताबों में थी जो बिल्कुल वाजे थी, बिल्कुल वाजे। एक एक मसलन एक बात कहती हूं मैं, ये इनकी किताब में है आज तक है कि ए मूसा, मैं तेरी उम्मत के भाइयों में से तेरी मानिंद एक रसूल उठाऊंगा जिसके मुंह में अपना कलाम डालूंगा, वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहेगा। क्या है सूरह नजम में, वमा यंते को अनिल हवा, वो वही कहेगा जो मैं उसको वही करूंगा। इतना वाज है, तेरी उम्मत के भाइयों में से, यानी वो बनी इसहाक में से थे या बनी इस्माइल में से, और उसके मुंह में कलाम डालूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने, जिनके मुंह में कलाम डाला गया, बाकी तो सारे ये वो कहते नहीं नहीं वो तो ईसा अलैहि सलाम के बारे में, ईसा अलैहि सलाम के बारे में, उनके ऊपर तो इंजील उतरी थी, किसी और ने नहीं ऐसे कलाम किया कि वही ऐसे आई हो। उनको उनको तो मूसा अलैहि सलाम को तख्तियां दी गई, उनको इंजील दी गई। वइन्ना फरीकम मिनहुम लयक्तुमुनल हक्क वहुम यालमून, इनमें से एक फरीक, वो कौन सा फरीक है? उलमा का फरीक, इनके उलमा का फरीक है जो यक्तुमुन अल हक, वो छुपाते हैं हक को, वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं। और अल हक मिन रब्बिका, हक तेरे रब की तरफ से, ये हक है तेरे रब की तरफ से, ये जो किबले की तब्दीली है ये। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तो आप शक करने वालों में से कभी ना हो जाए। यहाँ पे भी खिताब बज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मगर असल में मुसलमानों से, जिनको तहवील किबला में कुछ शक हो गया कि पता नहीं वो उनकी प्रोपोगेंडा में जो आ गए। अब देखे ना, ये जो बातें होती है ना प्रोपोगेंडा से, ये वर्क करते हैं, ये जो बार 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 एक चीज कही जाती है, आप सोचे मुसलमान इससे मुतासर हो जाते हैं, गैर मुस्लिमों ने तो होना ही है, उन्होंने तो कहना ही है कि हाँ फिर वाकई ये सही होगा। उनका भी बेचारों का क्या कसूर जिनको यही इंफॉर्मेशन मिलती रही, वो उसी को सच समझ बैठे। जब मुसलमान मुतासर हो रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही हमारे दीन को नहीं जानते। तो यहाँ पे कहा गया ये हक है, यानी ये किबले की तब्दीली, ये तुम्हारे रब की तरफ से हुक्म आया है, इसमें शक ना करना। वलिकुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर एक के लिए एक डायरेक्शन है, हर एक उम्मत को देखिए आप, उनका एक किबला है, दूसरों का भी एक किबला है, हर एक ने अपने अपने कोई तवज्जो का मरकज बनाया है, एक समत है, एक वजह है, एक डायरेक्शन है जिधर वो अपना मुंह करता है, अपनी तवज्जो करता है। यानी दुनिया में आप ऐसे देख लें, जो दुनियावी किस्म के लोग होते हैं उनकी भी कोई डायरेक्शन होती है ना, हर एक की कोई तो, उनके जो दीनी लोग हैं उन्होंने अपनी कोई डायरेक्शन बनाई हुई है। और एक तो तबका आज दुनिया का ऐसा आ चुका है जो किसी दीन पे भी नहीं है, उनकी सारी डायरेक्शन दुनिया है, वो दुनिया के पीछे भागते हैं, उसी के लिए मरते हैं, उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए सोते हैं, उसी के लिए जागते हैं, बस यही दुनिया दुनिया दुनिया। कुछ लोगों की डायरेक्शन ये होती है, आप देख ले हमारे में भी कुछ लोग, डायरेक्शन क्या होती है असल में, विजहतुन हुआ मुवल्लीहा का मतलब क्या है, जिसको हम कहते हैं ना पैशन, गोल, टारगेट, या लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, मकसद हयात, ये सब नाम देते हैं ना, हर एक का कोई ना कोई होता है। किसी का उसका घर होता है, बस घर घर, किसी का उसके बच्चे होते हैं, किसी का कुरान होता है, बस उसके लिए जीता मरता है उसके, वो जो 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 मकसद होता है ना, याद रखें, वो ऐसे नहीं होता कि मैं आपसे पूछूं अब क्या मकसद है तो आप सोच में पड़ जाए, सोचती हूँ, सोच के बताती हूँ, इसका मतलब वो कोई मकसद नहीं है, क्योंकि जो गोल होता है आपकी लाइफ का वो आपके दिमाग पे हर वक्त छाया होता है। आप उठते हैं तो उसका सोच रहे हैं, बैठते हैं तो उसका सोच रहे हैं, कहीं वेकेशन पे जाते हैं तो आप सोचते हैं उसका क्या बनेगा, तो हर चीज में पहले उसकी सोच होती है। कईयों की जॉब्स होती हैं जो बस दिमाग पे उनके सवार रहती है, बस दैट्स इट, वो उनकी जिंदगी का जैसे एक मकसद यही है बस जॉब। वो घर भी लेते हैं तो वो जॉब के पास हो इसलिए, क्योंकि जॉब ही उनका महवर जिंदगी है ना, जिसके गिर्द उनकी जिंदगी घूमती है, समझ लें सेंटर ऑफ लाइफ, ये समझ लें हर एक का है। लेकिन कुछ लोगों के लिए अल्लाह ने, जो इस उम्मत के लोग हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या बता दिया, तुम्हारा क्या सेंटर होना चाहिए, फस्तबिकुल खैरात, तुम नेकियों में सबकत ले जाओ, यानी तुम्हारा सेंटर ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, नेकी, भलाई, खैर के काम, और ये सिर्फ सेंटर ना हो, इसमें दौड़ लगाओ, फस्तबिकु, रेस लगाओ, आगे बढ़ो। आप देखें आज ये माहौल खत्म हो गया है कि आप कभी रेस नेकियों में देखें, रेस किसमें लगती है, कपड़ों में, पैसे में, जेवर में, ब्रांड नेम्स में, इसमें रेस है, तो लेटेस्ट किसके पास है, फोनों में, आज तो फोनों में भी रेस लगने लगी, तुम्हारे पास कौन सा फोन है, अच्छा मेरे पास लेटेस्ट है, गाड़ी तुम्हारे पास कौन सी ईयर की है, उसमें लेटेस्ट, ये है रेस के मैदान। आज अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, तुम्हारे रेस के मैदान ये नहीं होने चाहिए, सबकी एक डायरेक्शन, तुम्हारी क्या होनी चाहिए, नेकियां पाना, और उसमें दौड़ लगाओ। देखिए दौड़े सब लगा रहे हैं, आप देखते हैं ना, ये इनका मकसद है हयात, ये बस चीजें चीजें होता है। आप उनकी मजलिस में कभी बैठे या कभी अपनी मजलिस की रिकॉर्डिंग करें, आपको पता चलेगा वही जो आपका गोल होगा वही आपकी बातों में भी आ जाएगा। बाज मजलिसों में थ्रू आउट बातें क्या होती हैं, कपड़े, जेवर, आजकल क्या ट्रेंड चल रहे हैं, फैशन क्या चल रहा है, पर्स कैसा है, फलाने के पास क्या है, तुम क्या बना के लाई हो, अच्छा तुम पाकिस्तान से आई हो, अच्छा कुछ जेवर बनवाया वहां पे तुमने, मतलब सारा वक्त उनके टॉपिक ही यही है, जाहिर है जिंदगी इसी के गिर घूम रही है तो फिर टॉपिक वही होगा ना, कहीं होंगे और टॉपिक्स होते। तो अल्लाह ताला ने रेस लगाने को किसमें कहा, जिसकी रेस, जो देखिए रेस में आप थोड़ा देर के लिए इमेजिन करें रेस कैसी होती, देखी होंगी आपने दौड़ी लगती, रेस में भागने वाले की तवज्जो किस तरफ होती है, फिनिश लाइन की तरफ, वो कितनी दूर रह गई, वो ये नहीं देख रहा था हाँ लोग तालियां बजा रहे हैं या नहीं, कितने लोग आए हुए हैं, अच्छा स्टेडियम में बहुत लोग बैठे हुए हैं, अच्छा वो उसने कैसा पहना हुआ है और वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रही है, वो ये नहीं देखता, वो उसका निगाह किधर होती है। अच्छा आप देखिएगा ये कोई, आपको ये गूगल करके देख लेना कोई रेस का, वो देखे वो किधर उसका फोकस, उसकी एनर्जी, उसका जोर किधर लग रहा होता है कि बस मुझे अपने गोल तक पहुंचना है। जिसका गोल नेकी हो उसको जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहन आप कोई नेकी कर ले, आप ये काम कर ले, हाथ पकड़ पकड़ के कोई खींच रहा है, कोई पहले इनको मोटिवेट करे, इनको कोई लेक्चर दिया जाए, इनका कोई उभारा जाए, इनको जगाया जाए, फिर ये कोई नेकी के लिए खड़े होंगे, नहीं वो तो नेकी के मौके तलाश करता है कि मैं कोई नौकर रह ना जाए, मैं कैसी कोई नेकी करूं, और इसमें दौड़ लगाता है, सबकत ले जाने की कोशिश करता है। हम क्या देखते हैं, कर तो रही हूं और क्या करूं, कर तो रही हूं, हम सब ये सोचते हैं कर तो रही हूं और क्या करूं, क्योंकि हम किसको देख रहे होते हैं जानते, अपनी फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान वालों को, इनके साथ नहीं है हमने मुकाबले करने, हमने मुकाबले करने उनके साथ। याद रखें आप देखें ये जो रेस होती है उसमें भागने वाला कभी ये नहीं देखता मेरे पीछे कितने लोग हैं, हाँ वो बड़ा खुश हो जाए मेरे पीछे तो 100 लोग आ रहे हैं, वो सारे पीछे रह गए, वो किसको देख रहा होता है, अपने से आगे वाले को, कहता मैं इससे आगे निकल जाऊं, ऐसा ही है ना, मेरे से आगे 2 भाग रहे हैं या मेरे से आगे एक भी भाग रहा है तो उससे आगे निकल जाऊं, हमसे आगे कौन है, सहाबा-ए-कराम, ताबीन, तबा ताबीन, वो काफला है, वो जो मैंने आपको ट्रेन वाली बात बताई थी, वो पहले डब्बे में है, वो हैं जिनको देख देख के हमने दौड़ना है, हम इनके इन तक आ जाए, हम जोर लगाएं, हम किसको देखते रहते पीछे को, वो तो ये भी नहीं कर रही, मैं तो ये करती हूँ, वो क्या करती हूँ, तो नमाज भी नहीं पढ़ती, मैं कम से कम नमाज तो पढ़ लेती, वो तो इतने टाइट कपड़े पहनती हूँ, मैं तो लूज तो कपड़े पहनती हूँ। यानी अपने आप को देखो कैसी थपकियां देते रहते, डोज देते रहते, सो जा जागने ही नहीं देते, कभी थकाते हैं हम खुद को नेकी में। अगर कभी थकने की नौबत आ जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर तो हमारा इतने एहसान जताते हैं, आज तो मैंने ये कर लिया, लोग भी हमदर्दियां करने लगते हैं, आप तो बड़ी नेक है, इतना आपको करने की क्या जरूरत है, देखे ना, इतना भी नहीं करने की जरूरत, हम अपने आप ही तरस खाने लगते हैं। वैसे किचन में खड़े रहे सारा दिन तो तब नहीं कुछ मसला, लेकिन नेकी में बस एक नेकी कर ली उसके बाद रिलैक्स करते हैं, हम और करने की क्या जरूरत है, क्योंकि मुसाबिकत का जज्बा ही नहीं है कि मैंने आगे बढ़ना है, मैं दौड़ लगानी है, देखो मैंने इन सहाबी का पढ़ा, ये तो ऐसे ही थे, मुझे देखो ये ऐसे बनना है, मुझे ऐसा जज्बा आता है पता ही नहीं, क्योंकि ये इस मैदान में दौड़ने की हमें क्या, हम दूसरे मैदानों में जो दौड़ रहे, कोई एक ही मैदान में दौड़ सकता है ना, कोई करियर्स और माल माल और फैशनों के मैदान में दौड़ रहा है, कोई गाड़ियों के मैदान में दौड़ रहा है, कोई किसी मैदान में दौड़ रहा है, जो जब इस मैदान में आप दौड़ने लगते ना, फिर परवाह भी नहीं रहती, कोई कितना आगे चला गया दूसरे मैदानों में, फिर आप अपने ट्रैक में हैं, फिर आपको ये होता है मैंने तो इसमें आगे जाना है, उनको ये मिल भी गया तो परवाह नहीं, वो वहां भाग रहे हैं, उन्होंने उधर दौड़ लगाई थी, उनको मिल गया, कोई नहीं मैं इधर हूं, मुझे इधर भागना है, फिर ये जज्बा होता है। इस पे एक लेक्चर है एक ही में सबकत ले जाओ, या इस तरह से कुछ आप उसमें देख सकते हैं, तो ये बड़ा डिटेल का टॉपिक है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, अगर आप में से कोई सुनना चाहे तो शॉर्टेड लेक्चर्स में जाके सुन सकता है, नेकी में सबकत ले जाओ, या ऐसा आईना मा तकुनु याति बिकुमुल्लाहु जमिया, ये चीज है जो दौड़ाती है, कहाँ भी तुम चले जाओ, तुम्हारी खाक कहीं पड़ी हो, तुम्हारी हड्डियां भुर के चूरा चूरा हो जाए, अल्लाह ने तुम्हें उठा के ले आना, सबको वो ले आएगा जहां कहीं भी तुम हो, यही चीज तो दौड़ाती है फिर कि अल्लाह के सामने पेश होना, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, मर के मट्टी हो जाना होता तो ना करते कोई भी नेकी, क्या जरूरत थी, हमें क्या पड़ी भी है, खुद ही कर ले, मैं क्यों करूं, मेरी नींद, मेरा माल, मेरी एनर्जी, मेरा वक्त, मैं क्यों अपना वक्त लगाऊं, ये चीज कराती है, इसलिए लगाएं क्योंकि अल्लाह के आगे खड़े होना। वमन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शतर अल मस्जिद अल हराम, और जहां कहीं भी तुम निकलो तो फेर लो अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ। अगर हमारे पास हदीस ना हो, उनसे क्वेश्चन है जो मुनकिरीने हदीस हैं, जो लोग कहते हैं हम हदीस को नहीं मानते, वो इस आयत की तशरीह कैसे करेंगे, ये तो आयत कहती है जहां से भी तुम निकलो अपने चेहरे को फेर लो, तो मैं घर से निकलूं तो मैं काबे की तरफ मुंह कर लूं, मैं गाड़ी से निकलूं तो काबे की तरफ मुंह कर लूं, मैं स्कूल से निकलूं काबे की तरफ मुंह कर लूं, मैं अपने कमरे से निकलूं उधर मुंह कर लूं, ये तो कह रहा है मिन हई सुखर, इतना कुरान कहता है तुम जहां से भी निकलो तो तुम अपना मुंह फेर लो मस्जिद हराम की तरफ, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो ये मुनकर ने हदीस ये सवाल का तो जवाब बताएं कि वो इस आयत को समझेंगे कैसे, नहीं हमें हदीस की तो जरूरत नहीं, हम बस कुरान के साथ, कुरान ही काफी है हमारे लिए, वो बता दे इस सवाल का जवाब, हदीस के बगैर तो आप कुरान समझ ही नहीं सकते। वा इन्नहु लल हक मिन रब्बिका, और ये बेशक हक है तेरे रब की तरफ से, तो इतना एम्फोसिस है, इसका मतलब है कि किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने पे कितना जोर दिया गया है, और नमाज की शराइत में से ये एक शर्त है कि नमाज नहीं होती अगर आप किबले की तरफ मुंह ना करके नमाज पढ़ें, इल्ला ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इल्ला ये कि मसलन है आपको पता ही नहीं चला, आप किसी के घर गए आपको नहीं पता चला वो आपने एक दूसरी तरफ नमाज पढ़ ली, या आप अंधेरा था आपको नहीं पता चला, कोई सफर में आप गए हुए थे आपको समझ ही नहीं आई, हालांकि आप तो कंपस भी इसके मिलते हैं बिल्कुल, इसका किबला फाइंडर्स हैं, लेकिन चलो नहीं आपको समझ आया, उसमें भी कुछ नहीं आपके पास अवेलेबिलिटी थी, या जहाज में आप, जहाज में अब आप उस तरफ रुख कर ही नहीं सकते, मसलन आप जब मक्का से इधर को आए, सऊदी अरब से वेस्ट की तरफ आए किसी भी कंट्री में, तो आपके पीछे होता है काबा, जहाज दूसरी तरफ जा रहा है, तो अब आप उल्टा मुंह करके तो नहीं पढ़ सकते। जाते हुए उस तरफ को तो ठीक है, हम ईस्ट की तरफ जब जा रहे हैं अपने बैक होम पाकिस्तान इंडिया सऊदी अरब इधर को जा रहे हो, तो फिर तुम्हारे जहाज का मुंह उधर होता है, हम उधर को मुंह करके अपनी सीट पे पढ़ सकते हैं खड़े होके, लेकिन वापसी पे तो ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर क्या करें। तो जहां पे अशद मजबूरी है तो वो एक अलग बात है, उसमें भी अल्लाह ताला ने नमाजें जमा करने की जो हमें सहूलत दी भी ना, कि हम जुहर असर जमा कर सकते हैं और मगरिब ईशा जमा कर सकते हैं। तो अगर आपकी नमाज कजा नहीं हो जाएगी, यानी नमाजों का टाइम बिल्कुल खत्म, मसलन आप जुहर और असर सोच रहे हैं कि मैं वहां पहुंच के पढ़ूंगी, लेकिन वहां जब आप पहुंचेंगे तो ईशा हो चुकी होगी, तो अब आप जुहर असर आपके पास कोई चारा ही नहीं, अब आपको पढ़नी ही है और टाइम हो चुका है, तो अब आप जमा करके उनको जहाज में ही पढ़े, फिर जैसे भी पढ़ सकते हैं, और अल्लाह ताला माफ करने वाला है। तो उनके लिए एक्सेप्शन है, अदरवाइज बाकी आम लोग यानी कभी भी की परवाह ही नहीं की, कोई बात नहीं हमें पता नहीं है, चलो किधर भी पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं। पहले एफर्ट करें कि आप जानने के कहाँ को किबला है, फिर उस तरफ पढ़ें। तो ये शराइत में से नमाज की, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है इससे जो तुम अमल कर